खुदा का शुक्र है, एक बार फिर हमें मौका मिला कि आपकी खिदमत में हाजिर हों और खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर हमें मौका मिला कि यहाँ पर आके एक बहुत ही खूबसूरत सी सुबह की नवेद आप सबको दें। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में हम यहाँ पर रहें और आप सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कह रहे हैं। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने प्रोग्राम में, यानी प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। यहाँ पर खुर्रम भाई भी बैठे हुए हैं,
सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। और एक सुबह सी, खूबसूरत सी सुबह जो है वो आपकी मुंतज़िर है, बल्कि शुरू हो चुकी है। और उम्मीद करता हूँ कि आज आपका पूरा दिन जो है बहुत अच्छा गुजरे। और जैसे कि हसन ने सुबह सवेरे एक बड़ी खूबसूरत बात की, और ये बात कि अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हम लोग आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बार फिर।
इसमें एक जगह हमने पढ़ा था, वो हम आज के यानी जो हम हमारा वो LCD वाला हिस्सा है वहाँ पे हम ज़रूर बताएंगे, और नाज़रीन को से हम चाहेंगे कि वो ज़रूर आज का प्रोग्राम देखें, क्योंकि अहमियत के लिहाज से भी बहुत अहम है और दिलचस्पी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प था, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्हीं साहब का मैं एक जुमला कोट कर रहा हूँ कि वो जब जाते हैं अपने काम पर तो सबसे पहले उन्होंने सामने अपने लिखा हुआ है कि आज हम फिर से काम पे आ सकें, यानी इसका मतलब है हम मुकम्मल सेहत में हैं और खुदा ने हमें ये सेहत दी है, तो इसका हमें खुदा का शुक्र अदा करना
चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। लेकिन सिर्फ हसन, एक चीज़ यहाँ पर हमें ख्याल रखनी चाहिए कि जब बीमारी परेशानी आती है तब तो हम फौरन जो है हाथ उठा लेते हैं दुआओं के लिए और बहरहाल जो है कोशिश करनी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बीमारी या मसला, एक मुश्किल अल्लाह ताला की मदद से हल हो जाती है तो उसके बाद बिल्कुल भूल जाते हैं, ऐसा क्यों है?
पता नहीं, वाकई ये मैं एक ऐसी चीज़ होती है, शायद इंसान की फितरत में ही ये चीज़ मौजूद है कि थोड़ी उसको नाफरमानी करना शायद उसके उसमें आ गया, फितरत में आ गया है। लेकिन इस पर काबू पाने के लिए अपनी रूहानी कैफियत को बेहतर बनाना पड़ेगा। इसके बारे में भी यानी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर बताएंगे। एक चीज़ जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा वो ये है कि आज जो है तहकीकात का हफ़्ता, यानी आज से तहकीकात का हफ़्ता शुरू हो रहा है। दरअसल अगर देखा जाए इतवार से है, लेकिन आज पहला दिन है, बहरा कल रात से अगर हिसाब करें तो यहाँ पर सबसे पहला कदम इस सिलसिले में जो इस हफ़्ते में उठाया गया वो ये था कि जैसा कि आपको मालूम होगा एक बंदर को भेजा गया था खला में।
अच्छा।
और वो बंदर भेजा गया तकरीबन 120 किलोमीटर के ऊंचाई तक भेजा गया ज़मीन से, ज़मीन के यानी खला जो जहाँ पर जाके हवा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उससे अच्छे खासे फासले पर, और बिल्कुल सही और सालिम वो बंदर वापस आ गया। तो इस लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि ईरान की साइंसी जो तरक्की है वो सिर्फ इस हद तक नहीं है कि सिर्फ मकालात तक रहे, बल्कि बहुत ही अमली तरीके से ईरानियों ने दिखा दिया है इसको।
बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हमें जो है इससे जो है थोड़ा सा कह सकते हैं सबक सीखना चाहिए, और हमें भी जो है जोर लगाना चाहिए ताकि आगे निकले अपने कामों में। जिस जगह पे जरूरी नहीं है कि हम लोग रॉकेट भेज सकें, लेकिन
अपना काम सही करेंगे तो बहुत बेहतर हालत हम लोगों की हो जाएगी और अपने मुआशरे की बेहतर हालत बना सकते हैं।
जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा हफ्ते का मौजू चल रहा है, आरज़ू, उम्मीद करना और उम्मीद रखना। इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे, आप लोग भी बात करें, और हम जो हमारे माहिरीन फोन लाइन पे हमारे साथ आते हैं उनसे भी इंशाल्लाह इनसे
गुफ्तगू करेंगे। हमसे आप कैसे राब्ता कर सकते हैं चलते हैं एक ब्रेक के दौरान देखते हैं। इन सब रास्तों के अलावा आप हमसे फेसबुक के जरिए भी राब्ता बरकरार कर सकते हैं, facebook.com/SUT Morning Show। ये हम लोगों का खसूसी सफ़ा है सहर आलमी नेटवर्क से नश होने वाले प्रोग्राम यानी सुबह ज़िंदगी का। तो आज का प्रोग्राम हम लोग इस तरह आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि कभी थोड़ी देर में बहुत ही एक ज़बरदस्त मेहमान हम लोगों के पास आने वाली हैं। तो कौन है बताइए खुर्रम भाई?
डॉक्टर नादरा दादार इंशाल्लाह हमें जो है प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगी, और वो जो मौसमी बीमारियां आजकल चल रही हैं, जैसे कि आपको पता है ठंड की वजह से जो बीमारियां पेश आ जाती हैं, जो मसाइल पेश आ जाते हैं उसमें नमूनिया वगैरह भी है, गला ख़राब होना, खांसी, ये सारी चीज़ें जो है इस पर इंशाल्लाह उनसे हम बात करेंगे।
अच्छा, एक चीज़ मैं कल रात को मैं पढ़ रहा था, मेरे लिए दिलचस्प यकीन आपको मालूम होगी, वो ये था कि मैं हमेशा सोचता था कि बाज़ वक्त नाक जो है एक बंद हो जाती है, खुली रहती है, फिर दूसरी बंद होती है, फिर तीसरी खुल जाती है, तो उसमें जो है ये चलता रहता है दिन भर। सर्दियों में खुश ज़्यादा होता है, मैं समझता था नहीं मुझ में कोई ख़राब भी, हमने कहा तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे। लेकिन कल रात को जो चीज़ मैंने देखी वो बहुत दिलचस्प थी, इस लिहाज से ये खुद यानी कुदरत की तरफ से इंतज़ाम है कि ठंडी हवा अंदर न जाए और महदूद तरह से अंदर जाए ताकि हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो जाए। और ये खुद एक तरफ बंद हो जाती है सांस की नाली, और फिर यानी जो यहाँ पर नाक में हम कामनों के हैं वो हिस्सा, और फिर जो है वो दूसरा काम करने लगता है दूसरा हिस्सा, और फिर दूसरा बंद होता है तो पहला फिर काम।
बिल्कुल आपने ठीक पढ़ा, जहाँ भी आपने पढ़ा बिल्कुल सही है, कहा अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है किसी जो है जाहिर बात है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, उसमें कोई ना कोई वजह ज़रूर है। हत्या यहाँ तक कहा जाता है कि जो कान में आपके छोटे छोटे बाल होते हैं जो कान के ऊपर जो आपको नज़र आते हैं, जो लोगों को बड़ा बुरा लगते हैं क्योंकि हटानी, या नाक के अंदर जो बाल आ जाते हैं, अलबत्त ठीक बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि जी बिल्कुल साफ़ कर देना, और आपको पता है कि ये बाल अगर जो नाक के अंदर छोटे छोटे होते हैं इनको अगर बिल्कुल आप जो है कैंची ले के लग जाएं इनको काटने के लिए, तो उसका इतना नुकसान है कि जितना गर्द जितनी आलूदगी आप सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं वो आपके फेफड़ों में जाती है, और अगर वो नाक में रुक जाए बालों की मदद से तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर वो फेफड़ों में जाए तो बहुत नुकसान है, क्योंकि फेफड़े हमारे इतने हसास हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
ऐसा अगर ज्यादा बड़े होंगे तो बालों में फंस जाएगी, रोकेगे नहीं, बालों हो जाकर
बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जैसे आपने बात की कुदरत का एक निजाम है, हर चीज जो चल रही है वो अपने निजाम के साथ चल रही है, हम थोड़ी बहुत छेड़खानी उसके साथ कर देते हैं और गड़बड़ हो जाती है। जैसे डॉक्टर उस्मान खालिक भी उस दिन बात कर रहे थे कि आजकल जो गजाएं हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डब्बों में आ रही हैं पैकेटों में आ रही हैं, उन पर पता नहीं क्या क्या रिसर्च होती है, दूध के अंदर उसको ज्यादा पानी डाल के फिर उसको सफेद भी तो करना होता है, उसके अंदर चूना डाल दिया, ये ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि दुनिया कहाँ। एक बात हसन मैं कहना चाह रहा था, हमारे जो हफ्ते का मौजू है उस सिलसिले में अगर वक्त हो हमारे पास, आरजुएं तो रखनी चाहिए, क्योंकि आरजू जिंदगी में ना हो, उम्मीद जिंदगी में ना हो। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा कि अल्लाह ताला से उम्मीद, मैं ये सब कह रहा हूँ कि जो ख्वाहिशें इंसान के दिल में आती हैं, इंसान जो सोचता है कि जी ये मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, लेकिन हसन एक तरफ ऐसा भी हो जाता है कि जब आप उन आरजुओं तक उन ख्वाहिशात तक नहीं पहुँच पाते तो बड़ा अफसोस होता है, और इंसान जो को इंसान को एक वो धचका सा लगता है और इंसान बिल्कुल बैठ सा जाता है, ऐसे हालात में क्या किया जाए?
मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम लोगों को याद करना चाहिए किसने हम लोगों को खल्क किया है,
ठीक है,
और क्या हम लोगों की उम्मीदें हम लोगों के आरज़ू उससे बढ़कर हैं, उसकी याद से बढ़कर हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, लेकिन हम लोग के पास इस वक्त फुर्सत कम है, वक्त कम है, तो हम लोग पहले चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, खुद आप लोग यकीनन उससे नतीजा निकाल लेंगे। ये एक ताज़ा तरीन तहकीकात है जो मैंने अभी यानी एक हफ्ता नहीं हुआ है पढ़े हुए, नेचर जर्नल में जो बहुत ही मोतबर जर्नल उसमें शुमार जर्नलों में शुमार है उसका, तो उसके उसमें एक मौजूद एक तहकीक के बारे में मैं एक हल्की सी एक चीज़ बताऊँगा आपको। चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद। नाज़रीन फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो यानी बताने जा रहा था इससे कबल, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, और वो आप नेचर जर्नल जो है उसके अंदर आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत ही मोतबर जर्नल्स में उसका शुमार है, और वो इस हवाले से है कि जो ताज़ा तरीन तहकीकात हैं, जो एक तो आइंस्टाइन की तहकीक है और वो है रिलेटिविटी, और दूसरी तरफ जो एटर्निटी की जो यानी ये दो नज़रिए असल हैं पूरे कायनात के खिलकत के सिलसिले में, और कहा जाता है इससे आगे जो है हम लोग को अगर नहीं मालूम है उसकी वजह ये है कि बाज़ कहते हैं कुछ भी नहीं है, बाज़ कहते हैं नहीं वो बहुत ही दुनिया फैलती जा रही है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए अभी ताज़ा तरीन नज़रिया जो पेश किया गया है और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है यूँ है कि बहुत ही अहम इस लिहाज से हो गया, वो ये है कि दुनिया जो है वो ख़ुद एक होलोग्राफिक इमेज है, एक होलोग्राफिक शक्ल है। होलोग्राफ तो आपको मालूम होगा कि ख़ुद कुछ नहीं होता बल्कि कहीं से उसका नूर आ रहा होता है, तो दरअसल प्रोजेक्टर कुछ और है, हम लोग बस एक होलोग्राफिक इमेज है, और ये तमाम चीज़ें आपस में बहुत ही बारीक धागों के ज़रिए जुड़ी हुई हैं, तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए ये क्या चीज़ हो सकती है। वैसे ये मकाला इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक तर्जुमा करके खुद इस पे वेबसाइट पे हम लोग डाल देंगे या अपने फेसबुक पेज पर, ताकि आप लोग भी महसूस हो सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम और कह सकते हैं कि ताज़ा तरीन तहकीक को अगर आदमी रूहानियत से जोड़ ले तो यकीनन इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर दादार के पास, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और खुश आमदीद कहता हूं प्रोग्राम में।
बहुत शुक्रिया हसन, और जो हसन ने बात की वक्त क्योंकि महदूद होता है, आप ज़रूर जो है नेचर मैगज़ीन जो है उसको भी जाके चेक करें, और इंसान के अंदर शौक़ होना चाहिए कि इंसान जो है वो जाके मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़े, क्योंकि दुनिया के बारे में जानना जानने से हमें ये पता चलता है, जैसे अभी आपने बात की कि जी ये सिर्फ प्रोजेक्शन है, एक होलोग्राम टाइप की चीज़ है, तो इससे ये अंदाज़ा होता है इंसान को कि दुनिया फ़ानी है, जैसे कि हमारे मज़हब में भी आया है कि दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया फ़ानी है, अगली दुनिया जो है वो हमेशा रहनी। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं पढ़नी चाहिए, पढ़ने का शौक़ होना चाहिए इंसान को। डॉक्टर नादरा दादर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वक्त ज़ाया नहीं करूँगा मैं, चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम, और सब नाज़रीन को भी सलाम अर्ज़ करते हूँ, और आज के हमारे प्रोग्राम जो है نمونیا کے بارے میں, اس طرح سے قلبی بچوں کے زیادہ, خاص چھوٹے بچوں کے بارے میں کہ اس بیماری کیسے پھیلتے ہیں. لیکن آج ہم یعنی عمومی یا جنرلی ہم بات کریں گے, خاص طور پر بزرگوں کے لیے یا بالغوں کے لیے وہ اس میں علامات کیا ہوتے ہیں. اس طرح کے ناظرین کو سب کو پتہ ہے کہ آج کل کے موسم, ویسے پورے دنیا میں سردی زیادہ بڑھ گئی ہے, بعض ممالک میں -20 ڈگری سینٹیگریڈ وہ موسم بدل گیا ہے, اور آج کل کے وائرس کے وہ انفیکشن بھی بہت زیادہ پھیلتے ہیں. اور نمونیا کی جو بیماری ہے یہ ایک چھاتی کے عفونت ہوتی ہے, یعنی پھیپھڑوں میں وہ انفیکشن ہو جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے یہ ہے کہ زیادہ تر وائرس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں, اور جو رس فیکٹر ہوتے ہیں یا اس میں ریزن ہوتی ہے, باعث ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں کہ وہ خاص طور پر لوگوں کو, جو بزرگوں کے بارے میں آج زیادہ ہم بات کریں گے, اس طرح کی ہوتی ہے اگر وہ لوگ اس کے یعنی امیونٹی کم ہو,
صحیح,
یا یہ کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو اور یہ کیمو تھراپی کر رہے ہیں, کوئی خاص ادویات ہوتی ہیں اس بیماریوں کے لیے یوز ہوتے ہیں. پھر ان لوگوں کے جو سفید خلیاں کا ہمارا وہ جو ایک فوجی ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں, پھر یہ کہنے چھوٹے موٹے جراثیم بھی ہو نا وہ جلدی پکڑ لیتے ہیں. دوسرا لوگوں کو جو دل کو بیماری ہے یا ان کے دمک کو شکایت ہے, استھما ہم کہتے ہیں, ان لوگوں کے یہ زیادہ تر وہ اگر احتیاط نہ کرے وہ جلدی نمونیا پکڑ لیتے ہیں. سو عام طور پر یہ ہوتے ہیں, اس کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ علامات یہ ہوتے ہیں کہ خاص طور پر ایک سب سے پہلے نزلہ زکام اس موسم میں کافی ہوتے ہیں, ویسے گرمیوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نزلہ زکام کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, اگر وائرل ہو کو وہ 5-6 دن میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن بیکٹیریا یا جو دوسرے جو جراثیم ہیں وہ اس میں مکس ہو جائیں, پھر یہ نا کہ وہ خاص طور پر یہ جو بیماری پھیپھڑوں میں, ہمارے پھیپھڑوں کے جو سانس کے نالیاں ہوتے ہیں, جب پھیپھڑے میں جاتے ہیں اس طرح کے درخت کے طرح وہ چھوٹے چھوٹے وہ شاخیں بن جاتے ہیں, جو اینڈ پوائنٹ ہوتی ہے یعنی آخری وہ جو اینڈ ہوتے ہیں
جہاں پر جا کے ختم ہوتے ہیں, بالکل
ختم ہوتے ہیں یہ شاخیں, وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح یہ پھول گوبھی نہیں ہوتے, اس طرح
انگوروں کا خوشہ کا کہا جائے تو بہتر ہے کہ جی
وہ اینڈ میں وہ الویولے ہم اس کو کہتے ہیں, یا یہ کہنے کو وہ ہوا یہاں بھی وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایکسچینج ہو جاتے ہیں آکسیجن اور سی او. سو یہ ہے نا کہ وہاں پہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں, جراثیم وہاں پہ جا کے نا یہ الویولائی کو وہ اثر انداز ہے. پھر یہ ہے نا کہ پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, آکسیجن کی جو ٹرانسفیوژن ہے وہ مشکل پڑ جاتا ہے. اور اگر ان لوگوں کو اس طرح کی بیماریاں جو میں نے عرض کیا ہے وہ ہو, پھر یہ ان کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ جراثیم جو جسم کے اندر جاتے ہیں, سب سے پہلے علامات یہ دن بخار,
ٹھیک ہے,
کہ بخار 30-40 ڈگری سینٹیگریڈ سوری, یا یہ کہنا کہ وہ 101-102 ڈگری فارنہائٹ میں پہنچ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, الائنمنٹ سے جانے سے پہلے تھوڑا سا میں دوبارہ آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہوا جو آکسیجن کا بدن کے خون کے اندر آنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا خون سے واپس پھیڑ, یہاں پر مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں, کیونکہ نمونیا بولا تو جاتا ہے لیکن عام لوگوں کو یہ نہیں پتا زیادہ تر کہ نمونیا اصل میں ہو مسئلہ کہاں پر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نمونیا جو ہے وہ سینے کی ایک کنجیشن ہے جسے ہم میڈیکل میں کہتے ہیں, تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟
اصل یہ بات ہے, آپ اگر ہمارے دو پھیپھڑے ہوتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ پروگراموں میں میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ تصویریں کے تصویروں کے ذریعے میں کلیئر کروں. یہ ہے نا کہ جب ہمارے سانس کے نالی ایک ہیں یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ اندر جب جاتے ہیں یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں,
بالکل
سینے میں وہ دو شاخیں بڑے شاخ ہو جاتے ہیں, پھر ہر شاخ جو ہے نا وہ دو تین شاخے میں ہو جاتے ہیں,
بالکل,
پھر بعد میں چھوٹے چھوٹے شاخے
تقسیم ہوتی رہتی ہیں,
تقسیم ہوتے رہتے ہیں
ہزاروں,
اس طرح کا وہ ہمارے یہ ہاتھ ہے وہ پھر انگلیاں آ جاتے ہیں پھیلتے جا رہے ہیں. ان میں جو ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح کے بلون, چھوٹے چھوٹے بلون کے طرح,
بالکل جی,
چھوٹے چھوٹے بلون کے طرح ہوتے ہیں. ان میں وہاں پہ جو ہمارے پھیپھڑے میں اس طرح کے ہمارے وہ خون کے رگے ہوتے ہیں,
بالکل,
سرخ رگ جو ہوتی ہیں ہمارے پھیپھڑے میں, سرخ رگ چونکہ خون دل سے جو باہر جائیں وہ سرخ رنگ ہوتی ہے, جو اندر آتے ہیں وہ دل کی طرف جب آتے ہیں نا وہ سیاہ رنگ, لیکن ہمارے پھیپھڑوں میں یہ ایک ہے لیکن عمل الٹا ہے.
الٹا ہے بالکل صحیح.
چونکہ وہ جو دل سے خون پھیپھڑے میں آ جاتے ہیں
ٹھیک ہے,
کہ اس کے جو ہمارا وہ فالتو جو اس طرح کے سی او ٹو ہوتی ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ کو ہم پھیپھڑے میں ڈالیں, کیونکہ ہم سانس لیتے آکسیجن اندر جاتے ہیں
ٹھیک ہے,
لیکن چونکہ خون پھیپھڑوں سے وہ دل میں چلے جاتے وہ آکسیجنیٹڈ ہے
ٹھیک ہے,
اس کو پھر ہم سیارہ کہتے ہیں یا وین ہم کہتے ہیں.
بالکل, عام طور پہ سیارک جو ہے وہ گندا خون,
گندا خون عام طور پہ گندا خون,
لیکن یہاں پر الٹا,
یہاں پہ الٹا
ٹھیک ہے.
لیکن چونکہ بعد میں دل سے جو خون وہ پھیپھڑوں میں پہنچ جاتے ہیں اس میں چونکہ سی او ٹو یا کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ کالا رنگ ہوتا ہے, لیکن چونکہ دل سے باہر آتے ہیں وہ سرخ رنگ,
سرخ رنگ کے ذریعے پھیپھڑوں میں جائے گا,
پھیپھڑوں میں
ٹھیک ہے.
پھیپھڑوں میں یہ جو خون جو گندا ہوتی ہے سرخ رنگ جو دل سے آتے گندا ہوتے ہیں وہاں پہ جو الویولائی ہے جو ہم نے کہا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بلون کے طرح ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح ہوتے ہیں. اگر فرض کرے ہمارے یہ الویولائی ہے جو یہ سرخرک ہو, یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے کہ سرخرک ہو
ٹھیک ہے,
سی او ٹو ہوتی ہے اس میں, یہ سیارہ جو پیپروں میں آتے ہیں نا یہاں پہ ایک مشورک بن جاتا ہے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ نا کہ یہاں پہ جو سی او ٹو ہوتی ہے چلے جاتے سرخرک میں
ٹھیک,
سرخرگ سے یعنی کہ دل سے پھیپھڑوں کی طرف اور جو آکسیجن پھیپھڑوں کے وہ پھر دل کی طرف جاتے, یہ یہاں پہ ایکسچینج ہوتے ہیں. لیکن جب یہ جراثیم یہاں پہ یہ ہمارے الویولائی میں پہنچ جاتے ہیں یہ سسٹم کو خراب
کر دیتے ٹھیک,
یہ ایکسچینج صحیح طرح نہیں ہوتا.
صحیح ڈاکٹر صاحب, بات جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تفصیلی طور پہ جو ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا کہ ہمارے ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیماری مسئلہ اصل ہے کیا, نمونیا جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا. بہت شکریہ, بات کو آگے چلائیں گے, چلتے ہیں حسن کے پاس.
جی حسن, شکریہ خرم. موضوع ہم لوگوں کا ہفتے کا چل رہا ہے امید اور آرزو.
بالکل,
دیکھ رہا تھا اپنے اعجاز حسین صاحب نے ایک کمنٹ لکھا ہے کافی دلچسپ ہے, اس میں لکھا ہے کہ حسن رباب اور خرم سے کوئی امید وابستہ نہ رکھیں. بہرحال ہم لوگ جب اپنے کام نہیں آئے تو آپ کے کام کیا آئیں گے, لیکن بہرحال ہم لوگ خود ایک ذریعہ ہیں مناسب پیغامات آپ تک پہنچانے کے. چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. 6:58 ہو رہے ہیں اور آپ پروگرام صبح ہو زندگی ملاحظہ فرما رہے ہیں تہران کے اسٹوڈیو سے. بہت سردی ہو رہی ہے تہران میں, ویسے میرے خیال میں یا مائنس میں اس وقت ٹیمپریچر ہے یا بہرحال زیرو ڈگری تو ہے
ہوگا ہی, کیونکہ جس طرح کی ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے تو باقی, کیونکہ بارش بھی نہیں ہوئی نا کچھ دنوں سے, تو ظاہری بات ہے مائنس میں تو گیا ہوگا ٹیمپریچر,
کافی سردی بڑھنے کا امکان بھی ہے.
بالکل,
اس میں مشہد میں بھی کل جو تصویریں کچھ آ رہی تھیں وہاں سے مشہد مقدس سے, تو وہاں پہ بھی جو تصویریں دیکھی وہاں پہ بھی خوب برف آئی ہوئی ہے اور زبردست قسم کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے وہاں پر, جانا چاہیں تو انجوائے کر سکتے ہیں کافی.
ہاں جی, کپڑے گرم کپڑے شپڑے اپنے ساتھ رکھیں, باقی جو ہے سردی کو انجوائے کریں. چلتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس. جی ڈاکٹر صاحب, چلتے ہیں جلدی سے علائموں کی طرف.
یہ کہنے کی پھر ہمارا یہ پھیپھڑوں کے جو اینڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ اسے اثر انداز ہوتے ہیں
ٹھیک ہے.
پھر اس میں علامات کیا ہوتے ہیں؟ سوری, پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ سانس لینا مشکل ہوتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کو تھوڑا سا پانی پلاتے ہیں کہ چائے. جی جی,
سو یہ ہوتا ہے کہ سانس لینا بہت مشکل
ہو جاتا ہے,
کیونکہ پھیپھڑے صحیح طرح آکسیجن کو اندر نہیں لے کے جا سکتا
ٹھیک ہے.
پھر یہ ہے کہ نا کہ پھر ہمارے پھیپھڑے میں کھولنا بند ہونے میں پھر یہ اثر انداز ہوتے ہیں
ٹھیک ہے.
پھر یہ کہ سانس لینا مشکل ہوتے ہیں, اس طرح پمپنگ ایکشن ہوتے ہیں
ٹھیک ہے.
چونکہ یہ اگر ہم سانس لیتے ہیں اس طرح ہمارے وہ جو پھیپھڑے ہیں
ٹھیک ہے,
وہ ہوا اندر جاتے وہ کھل
جاتے ہیں ٹھیک ہے.
پھر بعد میں جب باہر نکلنا ہوتا ہے نا, چاہے ہمارے وہ پھیپھڑوں کے نیچے اور پیٹ کے درمیان میں ایک وہ مہیچا ہوتا ہے, اس کو ڈائیفراگ ہم کہتے
ہیں, پٹھے ہوتے ہیں جو ڈائیفراگ ہوتے
ہیں. پھر یہ ہے نا کہ آگے پیچھے کرتے ہیں وہ اس کو اسکویز کر کے نا
ہوا کو باہر
نکالنا, پھر بعد میں ہم جب سانس لیتے ہیں. لیکن یہ چونکہ اثر انداز ہوتی ہے ہمارے پھیپھڑوں کے وہ الویولائی میں, پھر یہ کہنا کہ آکسیجن جو ایکسچینج ہوتا ہے, پھر یہ ہے نا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں بڑھتے جا رہے ہیں.
اچھا,
پھر یہ کہ سانس لینے اس طرح کا ہم اس طرح پانی میں ڈوب گئے ہیں اور سانس لینا مشکل ہو جاتا
ہے.
پھر یہ ہے نا کہ پھیپھڑوں کو بار بار یہ پمپنگ ایکشن کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اس طرح کا ہم کھولیں گے نا کافی اثر ہوا اندر جاتا ہے
ٹھیک ہے.
لیکن جب یہ مشکل ہے انفلامیشن, اسی وجہ سے مریض کو علامات کیا ہوتا ہے, کھانسی آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر یہ کہ سانس لینا مشکل, چیسٹ میں یا چھاتی میں درد محسوس کرنے لگتا
ہے. درد کس وجہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے؟
دیکھو ہر جگہ میں جو انفلامیشن یعنی ورم ہو, سوزش ہو, چار چیز ہوتی ہے اس میں, یہ درد
ठीक है।
और चूंकि ये सोजिश होती है और जो हमारे वो नर्व जो आस पास होती है ना उसमें प्रेशर पड़ते जो दूसरे वो मतलब माइचा है या पत्ते है उसमें भी दबाव बढ़ जाते
हैं।
तो इसीलिए वो लेने में ना इस तरह के जख्म हो जाए फिर हाथ खोलने बंद होने बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वो सुरख होती है और फजा जो होती है ना वो कम हो जाते हैं। फिर ये कि ना खोलना बंद करना दर्द शुरू हो
ठीक है सही है
चेस्ट में दर्द शुरू होने हो जाते हैं। फिर ये कि सांस लेना मुश्किल होती है फिर हमारा रेस्पिरेटरी रेट यानी कि जो सांस लेना है एक मिनट में बलों के लिए 17 टाइम्स यानी 17 टाइम पर मिनट होते हैं लेकिन इस बीमारी में ये सांस लेने फूलते जा रहे हैं यानी कि बजाय के 17-18 हो 40 तक भी पहुंच जाते हैं।
ठीक है सही है।
छोटे बच्चों का कल डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया लेकिन कि छोटे बच्चों के 60 से ऊपर हो जाए फिर छोटे बच्चों में ये होते हैं ना फेफड़े अंदर चले जाते हैं ये पसलियाँ अंदर जाते हैं।
ठीक है
ठीक है। बड़ों के लिए वो सांस लेना अगर ख़वातीन हो ये छाती बहुत आगे पीछे जाते अगर मर्द हज़रत तो पेट में ज़्यादा महसूस होते हैं। अच्छा। ये फ़र्क होते हैं मर्दों को और ख़वातीन का सांस लेने का।
सही,
ये कि ना फिर सांस लेने फूल जाते रहते फिर ये कि वो बहरहाल जब हम ज़्यादा सांस लेते हैं हवा का ना फिर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी भी हो सकता है इसी तरह
खुश्क
होने शुरू फिर ये कि ना मुँह खुश्क हो जाते हैं ये सारे इसके अलामत होते हैं। सबसे पहले जुकाम के साथ होते हैं अगर जुकाम ठीक ना हो क्रोनिक ये फिर पर क्या हो जाता है ये जब सांस लेते हैं हमारे वो सांस के नालियों में वो मुखात होती है म्यूकस होती है फिर उसके थरोशहत बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। फिर ये कि ना बलगम आने शुरू हो
बलगम की सूरत में
बलगम की रंग जो होती है ना वो होती है तकरीबन रस्ती कलर यानी कि तकरीबन ब्राउनिश राइट ब्राउनिश के बाद अगर हरे रंग के वो बलगम निकल आने शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये खांसी हो कि मरीज़ को यानी कि थंग करे फिर ये हो जाता है कि खून भी आने शुरू होती है।
सही है ठीक है
डॉक्टर
साहब बहुत बहुत शुक्रिया माफ़ कीजिएगा वक्त हमारे पास महदूद है थोड़ा सा अभी चलना है हमने हसन पास हसन भी कुछ जो है मज़ेदार किस्म की चीज़ें हमारे नाज़रीन के लेके आए थोड़ा सा मेडिकल की बहस से बाहर निकलते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम काफ़ी आपने पेश खैमा तैयार कर
दिया बिल्कुल क्योंकि मुझे पता है आप जो है बड़े मज़े की एक खबर लेके आए मुझे पता नहीं है क्या लेकिन देखने में लग रही है कि मज़ेदार
इंशाल्लाह कि मज़ेदार हो। और नाज़रीन जो हम आपकी खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है कि हम लोग की तर्ज़ ज़िंदगी जो है बात हुई अब तक के बहुत ही मुश्किल हम लोगों ने ज़िंदगी अपने लिए बना ली। बाद ऐसे काम होते हैं जिनमें हम सोचते हैं कि वाकई क्या हम लोगों को कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए दूसरों से हमेशा हम लोग बहुत ही बदअखलाकी और यानी तनाव रखें आपस दूसरों से तब जाके हम लोगों की अपनी शख्सियत बन पाएगी। खुसूसन बाज़ काम ऐसे होते हैं मिसाल उनमें से एक जो काम है और मुसलसल ट्रैफिक में गर्मी में सर्दी में हर वक्त आपको बाहर रहना पड़ता है अपने घर वालों से दूर रहना पड़ता है या दूसरों से मुसलसल दिन में कई बहुत आगे पीछे यानी करना पड़ता है दूसरे लोगों के साथ वो है टैक्सी ड्राइविंग। और इस सिलसिले में जो बहुत ही अहम चीज़ है वो ये है कि एक टैक्सी ड्राइवर एक माशरे को अच्छा बना सकता है एक माशरे को बुरा भी बना सकता है अपनी एनर्जी मुनासिब देकर एनर्जी यानी वो पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो मनफी एनर्जी हो या मुस्बत एनर्जी हो उसके ज़रिए। तो इब्राहिम दहबाशी ज़ादे साहब एक टैक्सी ड्राइवर हैं तेहरान में और बहुत ही ख़ास किस्म के टैक्सी ड्राइवर हैं। उनका ख्याल है कि अगर लोग खुश रहें तो खुसूसन टैक्सी ड्राइवर खुश रहें और खुश रहने की न सिर्फ ये कि कोशिश करें बल्कि दूसरों को ये खुशी दूसरों को इजहार करें तो यकीनन एक मुआशरा सुधर सकता है। उन्होंने बहुत ही एक ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने अपने गाड़ी के ये तकरीबन हैंडल के पास लिखा हुआ है कि मुस्कुराते हुए गाड़ी में दाखिल हों और अगर कोई न मुस्कुराए तो उसे कहते हैं पहले पढ़ो फिर दाखिल हो वरना मैं तुम्हें नहीं पहुँचाऊँगा और इनके ये उसूल बन गया है। और देवाशी साहब की ख़ास चीज़ ये है कि उनकी तकरीबन इस वक्त 75 साल उम्र है और उन्होंने कहा है कि मैं 46 साल से टैक्सी ड्राइवर हूँ और 46 साल मज़ीद मैं उम्मीद रखता हूँ कि टैक्सी ड्राइवर रहूँगा और लोगों में उम्मीद फैलाऊँगा और उनमें ये यानी फ़िक्र उम्मीद वाली फ़िक्र जो है वो फैलाऊँगा। एक और काम जो बहुत ही अहम इन्होंने किया है वो ये है कि इस सिलसिले में जो कोई उनके गाड़ी में दाखिल होता है एक बहुत ही ख़ास यानी माहौल महसूस करता है वो ये है कि जब वो दाखिल होता है तो सबसे पहले बहुत ही एक ज़बरदस्त खुशामदीद उनको मिलता है टैक्सी ड्राइवर की जानिब से यानी ख़ुद इब्राहिम साहब की जानिब से और सामने बहरहाल जो सजा हुआ है उनकी गाड़ी का डैशबोर्ड और ख़ुद गाड़ी ख़ास किस्म से सजाई गई है बहुत ही फ़िक्रमंदी के साथ स सजाई गई है, तो उसमें बहुत ही ज़बरदस्त माहौल सबको मिल जाता है, और आखिर में जब उतरते हैं तो एक बहुत ही मुख्तलिफ नज़रिए के साथ उतरते हैं। आम बड़े शहरों में आपने देखा है कि बहुत मुश्किलात ज़्यादा होती हैं लोगों की, और जब टैक्सी में बैठते हैं तो ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं, क्योंकि ड्राइवर जो है चार चीज़ें वो भी अपनी सुना देता है, तो और वो टेंशन, वो तनाव वो और बढ़ जाता है। तो देहबाशी साहब ने ये कोशिश की है कि इसको तकरीबन ख़त्म करें। उन्होंने कहा है कि उनकी अब तक वो 6 मुख्तलिफ क्या कॉपीज़ उन्होंने वो भर चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स थे, और 1,600,000 कमेंट्स उनके लिए अब तक लिखे जा चुके हैं। वो हर दफ़ा ऐसे यानी बर्ताव करते हैं कि वो लोग खुश हो जाएं। उनका फ़लसफ़ा ये है कि शुरू कैसे हुआ कि ये एक आम दुकानदार थे, और वहाँ पर ये दुकानदार जो थे उसमें कामयाब भी नहीं थे ये ज़्यादा, तो फिर टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गए। जब टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गए, कहा कि मुझे कोई फ़र्क, ये मुझ में और दूसरों में कोई फ़र्क होना चाहिए, तो ये फ़र्क सबसे ज़्यादा अहम फ़र्क था, और उन्होंने कोशिश की इसके ज़रिए अपनी रूहानियत, अपनी मानवियत को बढ़ाएं, और इस सिलसिले में बहुत कामयाब हो गए। उनकी अपनी एक वेबसाइट भी है, और बहुत ही मज़ेदार सी उनकी वेबसाइट है, उसका एक्सेस taxiran.blogfa.com, इसके ऊपर आप जाके, बहरहाल फ़ारसी में, लेकिन बहरहाल बहुत सारी मुफीद चीज़ें उनकी इस वेबसाइट पर मौजूद हैं, और इसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर की फ़िक्र कैसे दूसरों को मुतासर कर सकती है। चलते हैं एक मुस्कुराहट के साथ अगला प्रोग्राम देखते हैं, अगला हिस्सा देखते हैं। अच्छा, हमारे एक साथी है यहाँ पे, कह रहे थे कि सारे टैक्सी ड्राइवर्स इस तरह के क्यों नहीं होते, तो मेरा जवाब भी यही था, और यकीनन ऐसे ही है कि वाकई शायद ये इंतज़ाम है कि बाज़ लोग जो हैं अपनी खुशी का अगर सभी इजहार करने लगें तो शायद एक ख़बर ना हो, बल्कि कुछ लोग अगर करें तो यकीनन एक ख़बर में तब्दील हो जाती है। और उम्मीद वैसे करते हैं कि इंशाल्लाह ये ख़बर की हैसियत न रखे, और सारे हमारे टैक्सी ड्राइवर्स खुसूसन जो हैं, मालूम है बहुत मुश्किल काम है उनका, लेकिन इस तरह के हो जाएं ताकि एक उम्मीद फैल जाए पूरे मुआशरे में हमारे। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार सी है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। खुर्रम भाई अपनी चॉकलेट्स आप देखिए यहाँ पर, और यानी
मज़ेदार लग रही
है। हाँ, तस्वीर लगाते वक्त मेरी हालत ख़राब हो गई, ये मैं बताता चलूँ। और इसमें जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो इस हवाले से है कि चॉकलेट में जो चॉकलेट और अंडे में दो ये दो चीज़ें हैं कि अगर आप उसको इस्तेमाल करें, खाएँ, तो ये होता है कि आप दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इसमें एक ट्रिप्टोफान नाम की एक यानी एक मादा है अंदर, उसमें वो बायस बनता है जो एमिनो एसिड यानी जो होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है, जो ये ख़ास इसकी चीज़ यही होती है कि ये बायस बन जाता है कि हम काफ़ी हद तक दूसरों पर भरोसा करने लगें, मोहब्बत करने लगें। और कहा जाता है कि ये इसके अलावा, ये चॉकलेट के अलावा अंडे में भी है, यानी अगर अंडा आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो दूसरों पर भरोसा करना, दूसरों पर उम्मीद रखना, ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। इसके बारे में मैं मज़ीद चीज़ें लिखूंगा इंशाल्लाह फेसबुक पेज पे, हम लोगों के ज़रूर देखिएगा SUT मॉर्निंग शो। तो ये अभी हम लोग चलते हैं डॉक्टर दादार के पास, और वो आपको उनकी गुफ्तगू मुलायजा फरमाइए।
बहुत बहुत शुक्रिया हसन पदम जी, पता है आपने बहुत सी बातें लेके आए थे, लेकिन वक्त जो है वो महदूद है, डॉक्टर साहब के पास भी चलते हैं, लेकिन उनको भी ये बताएंगे कि वक्त महदूद है।
जब इस तरह की अलामत हो गए, फिर ये एक हफ्ते से ज़्यादा भी हो जाए, ज़ुकाम भी हो गया, फिर ये हो गया, इसमें ये कि ना घर वाले क्या कर सकते हैं, इससे पहले कि डॉक्टर के पास जाएँ या हॉस्पिटल
तो दवाइयाँ दवाइयाँ,
सबसे पहले मरीज़ को होना चाहिए कि आराम करें,
ठीक है,
फिर उसको ये लिक्विड ज़्यादा ले लें, यानी इस तरह के पानी ज़्यादा, सूप, गर्म चाय, ऐसे चीज़ें, ख़ास तौर पर ये जो सूप होती है ज़्यादा बेहतर होते हैं, ऐसे चीज़ें खाने चाहिए। फिर उसके बाद घर के जो माहौल है ना, खुशक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माहौल खुशक हो फिर सांस लेना मुश्किल होता
है, हवा जो
है, इसमें क्या जी, इसे ह्यूमिडिफाई करना चाहिए, यानी इसमें क्या, अगर वो घर में नेबुलाइजर हो, नेबुलाइजर यूज करें,
नेबुलाइजर
एक भाप बनाते रहते हैं, आजकल को मार्केट में दो किस्म की होती है, एक होती है खुशक वाला नेबुलाइजर के वो ये जो भाप जो है ना नजर नहीं आता, लेकिन मौसम को ना खुशगवार रखते हैं। फिर ये होना चाहिए। तीसरा होम रेमेडी ये है कि ये जो पुदीना होते हैं,
ठीक है,
पुदीना को ख़ास तौर पर ये WHO भी हम ये चीज़ को यानी मानते हैं,
ठीक है,
कि पानी गर्म करें, एक दो गत्ती जो है ना पुदीना को बिल्कुल एस्टेम के साथ, शाखा के साथ दो के ना, फिर जब पानी उबल हो जाए उसको नीचे रख लें, फिर ये दो तीन गत्ती ये जो पुदीना है उसमें डालें आधा घंटे, कि उसका रस जो है ना वो पानी के अंदर जाए,
ठीक है, फिर
दम देने बगैर कि उस छोले के से निकाल देना,
ठीक है,
फिर उसके बाद इसको साफ करके फिर एक किस्म के शरबत बन जाते हैं,
ठीक है,
कि फिर शहद के साथ इसको मिक्स करें,
ठीक है,
कि ये है ना कि अगर मैं से कफ सिरप की तरह सुबह दोपहर शाम एक एक दो बड़े चम्मच वो पी ले, ये आरामदेह हो जाता है। दूसरा ये चीज़ें ख़ास तौर पर यानी एहतियात करना चाहिए, और दूसरों के साथ यानी कि अगर ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ख़ास तौर फार्म मेडिकल है, ये लोग अपना ड्यूटी पर ना जा रहे, रेस्ट करें। और अगर एक होती है ना कि फिजियोथेरापी, चेस्ट फिजियोथेरापी होती है, ये है ना कि जो बलगम जो सख्त हो जाते हैं नीचे फेफड़ों में रहते हैं, ये है ना कि वो अगर न्यू यानी कि बड़े बच्चे हैं 12-13 साल के, ये बड़े लोगों के खास बुजुर्गों के लिए, इसके ये है ना कि वो चेस्ट को वो पीछे करके ना बहुत थपकी मारने, वो हाथ को बिल्कुल ऐसे जोर से नहीं ऐसे रखे ना, फिर वो ये कहना सर नीचे रहे, ये नहीं कि सर को ऊंचे, खास तौर पर लोग कहते नहीं नहीं इसको सांस नहीं आते ऊपर, ये गलत बात है, इसको नीचे, जिसमें फोस्टा ड्रेनेज हम कहते हैं, यानी कि सोने के टाइम नहीं सर साइड में और नीचे की तरफ, क्योंकि हमारे जो लंग्स की जो नालियां हैं, सांस की नालियां हैं, फिर ऐसे है ना, पर अगर हम ऐसे करेंगे वो ड्रेनेज करेंगे, क्योंकि हमारे ये जो जब को होती है ना वो नीचे की तरफ, फिर ये बलगम निकलने शुरू हो जाती है।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा वक्त हमारे पास महदूद होता है हमेशा, माफ़ कीजिएगा। चलते हैं नाजरीन, हम लोग के पास एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं और उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे हमारे साथ।
जी नाजरीन, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। इस वक्त हमारा रबता हो गया है मोहतरमा सैयदा इरम नकवी साहिबा से, जो हमारे मजहबी उमूर के माहिर हैं और समाजी उमूर और मजहबी उमूर के माहिर हैं। इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू करेंगे, तो अगर लाइन पर मौजूद हैं तो मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
हेलो
सलाम अलैकुम।
जी सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फिर से आपने आपको जहमत दी है इस हवाले से कि उम्मीद रखना और आरजू रखना दूसरों पर, यानी वाकई उम्मीद करना बहुत ही एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, और भरोसा करना खुसूसन, इसके बारे में एक तो ये पहलू होता है उसका कि आप जो है छोटी चीज़ों पर आपने उम्मीद कर ली, एक होता है कि नहीं, एक वाकई एक मुआशरे का मसला होता है, एक उम्मीद कायम रखना मुआशरे में किसी चीज़ की तरफ ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए, इसको हम कैसे अपने मुआशरे में अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं ताकि अपने मुआशरे को बेहतर बना सकें?
जब हम देखते हैं असल में जो है जिंदगी का दारोमदार ही उम्मीद पे है, जब एक किसान को देखते हैं वो खेती बाड़ी करता है इस उम्मीद के साथ कल को जो उसको महसूल हासिल होगा उसको वो जो है वो उस महसूल को हासिल करने के लिए, या एक तालिब इल्म जो है अपनी जो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है इस उम्मीद से कि आइंदा जो है मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक होगा, या मुख्तलिफ चीजें आप देखें जिंदगी में, साइंटिस्ट है अगर वो अपनी तहकीकात करे इस उम्मीद से कि अच्छे नतीजे हासिल करके वो लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, तो असल में दुनिया तो चलती उम्मीद पे है। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो समझे कि एक जैसे दुनिया ही रुक जाती है इंसान की।
सही।
तो उम्मीद छोटी चीज पे रखें या बड़ी चीज पे, जाहिर है आरजुएं इंसान की या छोटी होंगी बड़ी होंगी, उन्हीं को हासिल करने के लिए उन्हीं उम्मीदों पे जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब देखें कि हम अगर दिन शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमें शाम तक ये काम करने हैं, ये लोग किसी से मतलब हमें ये फायदा पहुंचाना है, किसी से हासिल करना है, तो यही है यानी जिंदगी गुजारने का तरीका है कि अच्छी उम्मीदें रख के अच्छे काम करके इंसान जो है अपने दिन का आगाज करता है, और इसी तरह से हर जो है अपनी जिंदगी का हर दिन जो है वो इस उम्मीद के साथ गुजारता है कि उसमें वो खुदा की इताअत और खुदा के जो है बताए हुए जिंदगी गुजारने के तरीकों पे वो उस तरह से चलेगा और उस उम्मीद से वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा।
सही। नकवी साहब एक मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, जब एक शख्स अपनी आरजू पर नहीं पहुंच पाता तो दुख होता है, थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे हालात में कैसे अपने आप को संभाला जाए?
देखें ठीक है, वो तो हम कहते हैं कि इंसान अपनी इरादों को टूटने से हम खुदा को पहचानेंगे, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान इरादों के टूटने से खुदा को पहचानेगा। बहुत सारी चीजें, शायद हमारी मसलहत नहीं है उस चीज में कि वो हमारी जो आरजू है वो हम उस तक पहुंचे, तो इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फिर भी सबर करना चाहिए। इसलिए हमें बहुत सारी मिसालें कुरान में मिलती हैं। ये किस्सा आपने मशहूर सुना ही होगा, मुझे नहीं पता वक्त इतना है या नहीं, लेकिन ये कि हजरत याकूब का जो किस्सा है कि हजरत यूसुफ के उस इंतजार में 25 साल जो है उन्होंने सबर किया इस उम्मीद के साथ कि एक दिन जो है वो मिलेंगे उनसे।
बिल्कुल बेशक,
मुख्तसर जी
बिल्कुल। सईदा इरम नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत मुफीद आपसे गुफ्तगू रही, लेकिन माफ कीजिएगा वक्त हमारे पास हमेशा महदूद होता है, ज्यादा बात नहीं कर पाए हम आपसे, बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया।
अच्छा खुर्रम, बहरहाल हम लोग का वक्त बहुत ही कम रह गया है, तो मैं कल का मौजू बताता चलूँ कि हम लोग सेहत और जेनेटिक्स पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन आपसे, और डॉक्टर मेहमान के बारे में।
जी डॉक्टर हुसैन अहमद जो हैं वो हमारे साथ होंगे, और डॉक्टर साहब जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो जो है ये बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स में पहले बैचलर्स किए उन्होंने, अभी जो है यहाँ पर ईरान में वो मास्टर्स कर रहे हैं तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और बहरहाल जो है एक
उनसे मेरी मुलाकात यहाँ पर प्रोग्राम में नहीं हुई है लेकिन बाहर हुई है, बहुत ही बहरहाल एक अजीम कह सकते हैं शख्सियत है उनकी, और खुशा इन्हें साइंसी ज़बरदस्त शख्सियत है। तो हफ्ते का मौजू हम लोग का आरजू और उम्मीद है, इस हवाले से इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमें और खुर्रम को इजाज़त दीजिए,
खुदा हाफिज़।